श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 17। अविभक्तम् च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितम् भूतभर्त च तद्गेयम् ग्रसष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है, वह एक रूप में स्थित है। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। शब्दों को समझ लीजिएगा। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, यानी कि सभी जीवों में विभक्त हुआ दिखते हैं। स्थितम मतलब दिखते हैं, ऐसा लगता है कि सभी जीवों के बीच में वो बटे हुए हैं, लेकिन अविभक्तम अर्थात अलग से उनकी सत्ता है, भगवान की सत्ता है। और भूत भर्त तद गेयम, यानी कि समझना ये चाहिए कि सभी जीवों के वो भर्ता हैं, भर्ता अर्थात पालन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मारने वाला कोई और है, भगवान स्वयं ही मारने वाले हैं। प्रलय के कारण भी वही हैं और उत्स यानी कि सृष्टि के कारण भी भगवान ही हैं। अर्थात इन सभी कार्यों से भगवान पूरी तरह से निर्लिप्त है। और जैसे आप देख सकते हैं कि माँ जन्म देती है तो माँ बच्चे को मारती थोड़ी है, प्रायः बोला जाए, अब अगर अबॉर्शन की बात ना की जाए तो बाय माता अपने बच्चे को मारती नहीं है। या किसी ने अगर जन्म दिया है तो जरूरी नहीं है कि जीवन भर वो पालन करने वाला भी हो। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भगवान ही पालन करने वाले हैं, भगवान ही संहार करने वाले हैं और भगवान ही जन्म देने वाले हैं। भले ही हमको लगे कि माध्यम अलग अलग कोई है, ये जो व्यक्ति जन्म दे रहा है वो व्यक्ति जन्म दे रहा है, लेकिन वस्तुतः भगवान ही जन्म देने वाले हैं। तो श्लोक तो क्लियर समझ में आ रहा है। अब हम उसको जरा तात्पर्य को देखते हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण की टीका को ही प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया है, उसको पहले मैं एक बार समझा देता हूँ, मतलब पढ़ लेता हूँ, अनुवाद बता देता हूँ, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी की टीका को भी देखेंगे। तो शुरुआत होती है अविभक्तम, वो भगवान सभी जीवों के बीच में हैं, सभी जीवों के बीच में हैं, लेकिन फिर भी वो जो जीव हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं। सभी लोग विभक्त हैं, अलग हैं, लेकिन भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी अविभक्त हैं। लेकिन ऐसा लगता है, इसमें लिखा है विभक्तम इव चस्तम इव, मतलब ऐसा लगता है कि सभी जीवों के बीच में वो अलग अलग हो गए हैं। जैसे कोई पेपर है और उस पेपर को थोड़ा थोड़ा फाड़ दिया जाए और सब जगह फैला दिया जाए तो सब जगह व्याप्त तो हो जाएगा, लेकिन उस पेपर की उस कागज की खुद की सत्ता समाप्त हो जाती है। लेकिन भगवान के संग ऐसा नहीं है, भगवान अव्यय हैं, सभी जीवों के हृदय में व्याप्त होने के बावजूद भी उनकी सत्ता बनी रहती है। और श्रुति संबंध में कहती हैं कि भले ही वो अकेले हैं, एक हैं, लेकिन वो बहुत हो जाते हैं। एकोपि सन् बहुधा यो वभाति, गोपाल तापनी उपनिषद में है कि वो भगवान अकेले हैं, अकेले मतलब एक हैं, और वो अन्य जीवों में सभी जीवों में व्याप्त हो जाते हैं उनके हृदय में। स्मृति कहती है एक एव परो विष्णु सर्वत्रापि न संशयः, यानी कि भगवान विष्णु ही सर्वश्रेष्ठ हैं। ऐश्वर्याद रूपम एकम च सूर्यवद बहुधेयते, तो कह रहे हैं भगवान विष्णु ही सभी जगह हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से सूर्य अपने को सब जगह बहुत दूर स्थित रहते हुए भी अपने प्रतिबिंब को बहुत जगह स्थापित करता है, उसी प्रकार से भगवान भी करते हैं, मत्स्य पुराण में ऐसा लिखा है। इस चीज को प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बोल रहे हैं जरा हम आइए देखते हैं। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहां पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्यान्ह समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन यदि कोई चारों ओर 5-4 मील की दूरी पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वह उनके सिर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में उदाहरण यह दिखाने के लिए दिया गया है कि यद्यपि भगवान अविभाजित हैं, लेकिन इस प्रकार स्थित हैं मानो विभाजित हों। वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, तो एक उदाहरण आप समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सूर्य के बारे में पूछा जाए उसको भारत में मान लीजिए दिल्ली में पूछते हैं कि सूर्य कहाँ है 12 बजे, तो कहेगा सूर्य मेरे ऊपर है। और अगर आप गुजरात में पूछें तो वो भी कहेगा कि हाँ सूर्य मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है मतलब व्यक्तिगत रूप से मेरे ऊपर है, ठीक है, लेकिन सूर्य सभी के ऊपर है और सूर्य की सत्ता बिल्कुल अलग है। ऐसे ही सूर्य, एक और उदाहरण आप समझ सकते हैं कि सूर्य बहुत सारे घड़े हैं और उनके जल में अगर सूर्य का प्रतिबिंब सब जगह है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य की अपनी सत्ता समाप्त हो जाती है। सूर्य का प्रकाश प्रतिफलित उस एक प्रत्येक घड़े में होता है। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान का स्वरूप समाप्त हो जाता है। एक उदाहरण और दिया जाता है, हमने भक्तों से सुना था कि जैसे मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर हैं और वो बोलते हैं और उनका कुछ वक्तव्य आता है, तो वो चित्र जो है वो बहुत सारे टीवियों में दिखाया जाता है पूरे विश्व में या एटलीस्ट पूरे भारत में। तो चित्र पटल पे जो चित्र आ रहा है उसका भी एक रूप है, और प्राइम मिनिस्टर जो बोल रहे हैं वो कहीं अपना मान लीजिए दिल्ली में बोल रहे हैं, तो उसका एक अलग स्वरूप है। आप ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर सब जगह व्याप्त नहीं है अपने वक्तव्य जो उसका जो रेडियो प्रसारण हो रहा है उसके द्वारा, और आप ये भी नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर का खुद का स्वरूप दिल्ली में नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई अव्यक्त बोल रहा है और उसका वो रूप के रूप में प्रकट हो रहा है। तो स्पष्ट समझ रहे होंगे, यानी कि सूर्य की सत्ता हमेशा बनी रहती है और उसके प्रतिबिंब हर जगह पूरे दिखाई पड़ते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु अपने को परमात्मा रूप में व्याप्त करते हैं हर जीव के हृदय में, लेकिन भगवान की सत्ता बनी रहती है, वो उनका उनका स्वरूप जो है वो नष्ट नहीं होता है। उसके बाद फिर टीका पे आ जाते हैं, वो भगवान सभी का रक्षा करने वाले हैं और उनके पालक भी हैं। भूत भर्त शब्द का बता रहे हैं, और जब कल्पांत होता है तो वो प्रलय करने वाले भी वही हैं। और ग्रसिष्णु, हमने यहाँ पे शब्द देखा है ग्रसिष्णु, ग्रसन करने वाला, खाने वाले, अपनी काल शक्ति के द्वारा वो प्रलय भी करते हैं। और जब सृष्टि होती है तो प्रभु विष्णु अर्थात वो सृजन करने वाले हैं अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा, अर्थात जीव शक्ति और भौतिक शक्ति के द्वारा भगवान इस जगत की सृष्टि करते हैं। श्रुति संबंध में कहती है, जिसको प्रभुपाद जी ने लास्ट में कोट किया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातनि जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विज्ञाशर्वः। हमें समझ में आना चाहिए वो ब्रह्म या भगवान कौन है जिनसे सारे जीव आए हैं, जिनमें सारे जीव जी रहे हैं, जन्म लिए हैं, और जो उनकी तरफ वापस जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पे आ जाइए वापस। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमान के शक्तिमत्ता के द्वारा एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। जिस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों में होती है, इस चीज को मत्स्य पुराण से जो टीका गीता भूषण से हमने पढ़े था उसमें कोट कर दिया है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीव के पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। तो ये तो हमने स्पष्ट कर दिया था अभी। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जहां भगवान कहते हैं कि वे कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने यह भी कहा है, इसको बोलते हैं भगवान गीता में, कालोस्मी लोक क्षयकृत प्रवृद्ध हो, मैं काल हूं और सभी का क्षय करने के लिए प्रवृत्त हूं। हमने इसमें सुना था 11वें अध्याय में किस प्रकार से भगवान ने विश्व रूप दिखाया था, जिसमें सारे जितने भी योद्धा हैं वो उनके मुंह में जा रहे हैं और भगवान को खा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, कि वे काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं, काल शक्ति के द्वारा सब कुछ काल कवलित हो जाता है। वे सबके प्रलयकारी और संहार करता है, बिल्कुल भी अनासक्त हैं, पूरी तरह से भगवान अनासक्त हैं। इस जगत में कुछ हम सृष्टि करते हैं, छोटा घर बनाते हैं, तब भी कितना व्यक्ति आसक्त हो जाता है, उसे तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन भगवान इस जगत की अपनी सृष्टि से बिल्कुल भी अनासक्त है। जब प्रलय का समय आता है तो तुरंत उसको ध्वंस कर देते हैं। जब सृष्टि की जाती है तो वे सबों को मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निकल जाते हैं। मूल स्थिति का मतलब है, समझ सकते हैं कि महाविष्णु के शरीर में सभी जीव व्याप्त रहते हैं और उनको वो सुप्तावस्था में रहते हैं, तो उससे उठा करके फिर वो प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं, फिर शरीर देते हैं और उनको पूर्वगत किए गए कर्मों के अनुसार क्रियान्वित करते हैं। वैदिक स्रोत पुष्टि करते हैं कि वे समस्त जीवों के मूल तथा सबके आश्रय स्थल हैं। सभी जीव भगवान के ही अंश हैं और भगवान के ही चरणों में सबका आश्रय है। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट आती हैं। इसका अर्थ ये है कि जो भी जगत में हम स्थिति देख रहे हैं, अर्थात मेंटेनेंस देख रहे हैं, चीज़ें चल रही हैं, हमारा शरीर भी चल रहा है, वो भगवान की शक्ति से ही चल रहा है और जब प्रलय हो जाएगा तो सब कुछ उनके शरीर में प्रवेश कर जाता है, दिव्य शरीर में। ये सब वैदिक स्रोतों की पुष्टि करने वाले हैं। यतो वायमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासस्व, तैतरीय उपनिषद। ये चीज़ हमने कोट की चर्चा कर ली थी कि सभी जीव जो है भगवान से ही आते हैं, सभी जीव भगवान में ही रह रहे हैं और फिर उनकी तरफ ही प्रवेश कर रहे हैं।